ओम शांति। अभी आपके मुरली 20 मार्च 2017। सोलहवां प्रश्न, संपूर्ण मूर्ति किसे कहा जाएगा? संपूर्ण मूर्ति कैसे बने? संपूर्ण मूर्ति किसे कहा जाएगा? संपूर्ण मूर्ति कैसे बने? मूर्ति दाग ना हो और मूर्ति को सामने लाओ। मूर्ति है, रखी हुई है, वो कैसे बने? परफेक्शन क्या? संपूर्ण मूर्ति कैसे बने? स्टैच्यू, इमेज, आइडल, संपूर्ण मूर्ति किसे कहा जाएगा? अनुभव से मूर्ति शब्द, मूर्ति को लाओ सामने। जो मूर्ति होती है ना, वो कैसे बनेगी? एक तो बताया परफेक्शन, वो नहीं, मूर्ति सहनशीलता सबसे पहला है मूर्ति बनने के लिए। अगर हम 5 बातें निकाले तो एक है टॉलरेंस, जो जितना अधिक सहन करेगी वो मूर्ति उतनी अच्छी बनेगी। तो मूर्ति बनने के लिए एक जो गुण है, जो चाहिए, वो है सहनशीलता, टॉलरेंस। जितनी ज्यादा सहनशीलता उतनी अच्छी मूर्ति। और एकदम सुंदर मूर्ति बनाने के लिए फाइन स्ट्रोक्स दिए जाते हैं। एक है बड़े बड़े स्ट्रोक, फिर नाक ठीक हो, आंखें ठीक हो, फाइन स्ट्रोक में पेन भी उतना ही होगा। डीप पेन, तो बस टॉलरेंस। दूसरा परफेक्शन की इच्छा, बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा कि परफेक्ट मूर्ति बनना है, तब बनेगी मूर्ति। तब तक मूर्ति नहीं बन सकती। इच्छा किसकी? संपूर्णता की। लेवल क्या है इस इच्छा का, उस पर निर्भर है मूर्ति कितनी सुंदर बनेगी, कितनी परफेक्ट बनेगी। किसमें इच्छा कम है, किसमें अवेयरनेस व स्मृति बहुत अधिक है, तो उतनी परफेक्ट मूर्ति बनेगी। दूसरा, तीसरा, मूर्ति बनने के लिए क्या चाहिए? मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति को लाओ, ज्ञान को इधर बाजू में। मूर्ति, ज्ञान की पॉइंट निकालेंगे तो 200 हो जाएगी, सारा ही डाल देंगे उसमें। फिर मूर्ति बनने के लिए क्या? विश्वास चाहिए स्वयं में और अपने बनाने वाले में, मूर्तिकार में। बिलीव इन वनसेल्फ एंड स्कल्प्टर। जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाने वाला है, उस पर विश्वास। यदि मूर्ति को ये विश्वास ही नहीं कि ये बना सकेगा, तो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इटली में बहुत बड़े मूर्तिकार, चित्रकार, दार्शनिक माइकलेंजेलो नाम का एक व्यक्ति हुआ है। उसके जीवन में एक उदाहरण है कि वो एक बार किसी अपने मित्र के दुकान में गया और दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि ये पत्थर की क्या कीमत है? मित्र ने कहा, कीमत ये ऐसा ही पड़ा है कितने सालों से, इसको तो हम हटाना चाहते हैं। कोई इसे ले जाए तो बहुत अच्छा, इसको यहाँ से हटाना है। वो कहता है, मैं ले लूंगा। और वो माइकलेंजेलो उसको ले जाता है, उस बड़े से पत्थर को, और कई महीनों तक उस पे काम करता है और उससे एक चित्र, एक मूर्ति बनाता है, जो कि विश्व की सर्व प्रसिद्ध मूर्ति जो वेटिकन सिटी में रखी हुई अभी तक थी, बीच में किसी ने उसको तोड़ा फिर बनाई। वो मूर्ति ऐसी थी कि जिसमें मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी ने जीसस क्राइस्ट को सूली से निकाला नीचे और अपनी गोद में रखा हुआ है, तो जीसस क्राइस्ट उसकी गोद में है और मदर मैरी उसको देख रही है। ये वो मूर्ति थी। कहा जाता है कि ये जो मूर्ति थी दुनिया की सर्वोत्तम सबसे अधिक सुंदर मूर्ति, तो वो ये मूर्ति बनाता है उससे, उस पत्थर से। और उसका मित्र जब आता है कुछ समय के बाद तो उसको कहता है ये मूर्ति किसने बनाई और कैसी ये मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। वो कहता है ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जो मैं तुम्हारे पास से ले गया था। वो पूछता है मित्र तुमने कैसे बनाया। बहुत सुंदर उत्तर वो देता है माइकलांजेलो। वो कहता है कि जब मैंने पहली बार उस पत्थर को देखा तो मुझे आवाज आई उस पत्थर से, उस पत्थर से जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी दोनों ही पुकार रहे थे, ओ माइकलांजेलो फ्री अस, वी आर एनकेस्ड, हम बंधन में हैं, हमें मुक्त करो। एक मूर्तिकार, एक चित्रकार क्या देखता है। और वो कहता है कि केवल वो आवाज मैंने सुनी, वो प्रतिध्वनि, वो एको, और मैंने बस करते गया और वो मुक्त हो गई। पत्थर की आवाज थी। यहां दो बातें, एक तो उस पत्थर को विश्वास भी था कि ये बना सकता है। वो आवाज ही आ गई थी, उसने देख लिया था पत्थर में, वो बड़खाबड़ इतना बड़ा पत्थर, उसमें उसने मूर्ति को देख लिया। तो मूर्ति की भी ये इच्छा, बर्निंग डिजायर, मूर्ति की भी को संपूर्ण विश्वास की यही है जो बना सकेगा। तो और मूर्ति ने सब कुछ सहन भी किया। जितना अधिक सहन करेंगे उतना ही वो संपूर्ण मूर्ति बनेगी। तो जो हैमर है, हथौड़े है, परिस्थिति है, उन्हें क्या समझना, अभी भी वरदान भी था ना कुछ दिनों पहले, क्या है वो सब, किस लिए आ रहे हैं ये सारे व्यक्ति जीवन में, सुंदर बनाने के लिए, केवल मजबूत नहीं, नंबर वन मूर्ति बनाने के लिए। तो सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा बर्निंग डिजायर, तीसरा विश्वास, चौथा दृढ़ता, परसिस्टेंस, टूट ना जाना। यह विश्वास की मूर्ति बनना है। सारी परिस्थितियां विरोध वाली है, परंतु उन विरोध वाली परिस्थितियों में, उन व्यक्तियों के बीच में, उस परिस्थिति के बीच में, उस स्थान में जो स्थान बिल्कुल प्रतिकूल है संपूर्णता के लिए, वहीं पर संपूर्ण बनना है। उन्हीं लोगों के बीच, उसी स्थान में, उसी समय में, उसी डिपार्टमेंट में, उसी जगह, उसी सेंटर में, उसी मधुबन में, या संसार के किसी भी स्थान में, वहीं पर। और पांचवा विजुअलाइजेशन, मूर्ति स्वयं को ही देख ले, अपना संपूर्ण रूप मूर्ति खुद ही देख ले कि ये मैं हूं। अगर किसी पत्थर ने ये देख लिया कि मैं ये हूं, तो आप ही को खींचेगा उसको, वो रूप, वो संपूर्ण स्वरूप, केवल जो अनावश्यक है वो गिर जाएगा, फिर वो गिराने वाला कोई भी हो सकता है, परंतु उसने अपना रूप देख लिया है पत्थर ने कि ये मैं हूं। अपने संपूर्ण स्वरूप को मन की आंख से देखना, विजुलाइज करना, दृढ़ता रखना, विश्वास केवल उसमें नहीं जो बना रहा है, किसमें, स्वयं में, अपने में। एक है बाबा में विश्वास, एक है स्वयं में विश्वास, क्या चाहिए, दोनों में से ऑप्शन दिया जाए तो दोनों भी चाहिए, पहले क्या चाहिए, पहले स्वयं में निश्चय, स्वयं में विश्वास, मैं कौन, कल्प कल्प की विजयी आत्मा। विवेकानंद ने कहीं एक स्पीच में लिखा है, कहा है अमेरिका में, if you have faith in 33 million gods, but if you do not have faith in yourself, success will not come at your doorstep. सफलता तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी. सारे 33 कोटी देवी देवताओं में विश्वास है, स्वयं में विश्वास नहीं है. स्वयं में विश्वास, मैं कर सकता हूं. क्यों? फिर उसके बहुत सारे कारण है. समान है, कौन कह रहा है? सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो तुम्हारे सम्मुख है. कल ही कहा ना, तो संपूर्ण मूर्ति कैसे बने? इच्छा चाहिए, तीव्र इच्छा. जितनी तीव्र इच्छा है बनने की, उसी अनुपात में वो मूर्ति बनेगी. फिर इस मार्ग में जो जो बाधा है वो सबका त्याग कर देना. कौन कितना तीव्रता से त्याग कर देता है उस पर भी निर्भर करता है. जैसे एक व्यक्ति है, 4 दिन से भूखा है, कहीं पर भोजन नहीं मिल रहा है, तीव्र भूख है. कैसे प्यासा वो, प्यास वो भूख, और अचानक उसे एक स्थान पर भोजन दिखाई देता है और वो वहां पहुंच जाता है. उदाहरण के लिए ले लो गुलाब जामुन, उसका दिख जाता है. देखते ही शरीर में भी हलचल, मुंह में पानी, कब खाऊं और कब नहीं, बस अब मिल जाए. इतनी तीव्र श्रद्धा, इतनी तीव्र आवेग कि बस अब खाना ही है, नहीं खाऊंगा तो बस इसको खा के कब शांत कर लू, ऐसी इच्छा है. क्योंकि इतने दिन से भोजन ढूंढ रहा है, नहीं मिला है, और गुलाब जामुन सामने, बस खाने ही जा रहा है. किसी ने कह दिया मत खाना, इसमें जहर है, बिल्कुल मत खाना, तो वो खाएगा क्या? क्यों? अब तक तो उसे बिल्कुल खाना था, अब क्या हो गया? कैसे होगी? जिस अनुपात में वो ये रियलाइज करेगा, जिस अनुपात में वो ये विश्वास करेगा, उसकी वो इच्छा, उसने अभी उसको कोई कहे कि मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं खाओ, नहीं खाएगा. जो संबंध, जो संस्कार, जो कर्म, जो संकल्प, हमें ये पता चल जाए कि ये जहर है, उसी अनुपात में उसे छोड़ा जाएगा. वो रियलाइजेशन, वो फेथ, वो डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी, कि ये वो संबंध है, ये वो व्यक्ति है जो मेरे लिए जहर है, इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे, इस संबंध से जब तक मुक्त नहीं होंगे, इस अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है. उस व्यक्ति को अभी तक खाना था और अभी उसने एकदम ही रिजेक्ट कर दिया, नहीं, भूख से मरूंगा, उससे नहीं मरूंगा. ये रियलाइजेशन, ये सारी चीजें, चाहे व्यक्ति, चाहे संबंध, चाहे संस्कार, चाहे कर्म, चाहे बोल, ये जहर है. जहर का रियलाइजेशन, अभी अभी मुरली आया था ना, मरते समय कोई विष की इच्छा करता है क्या? लड़ाई के समय था ना मुरली में, अभी अभी था, साकार मुरली. ये जानना कि ये जहर है, शायद यह संबंध जो है बंधन, परंतु बहुत मीठा मालूम हो रहा है, शायद यही बाधा है जिसको हमने बचा कर रखा है. सोने का है, हीरे जड़े हुए हैं, परंतु यही बंधन है. नाम ऊपर से सेवा का है, पर उस सेवा के बंधन में ही बंधन है, संबंध में ही बंधन है. तो संपूर्ण मूर्ति बनना है. फरिश्ता लाइफ क्या है? अगला प्रश्न 17वां. वो सारी बातें नहीं बताओ जो सबको पता है. फरिश्ता लाइफ क्या है, अर्थात दूसरा प्रश्न है 18वां. फरिश्ता ऐसे नजर आ रहे जैसे बाबा देख रहे, बाबा कैसे देख रहे, हमें एक दो को कैसे देखना है? अपना ही 22वां प्रश्न है, अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। अरविंद भाई, अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा कौन सा रूप और कैसा देखना है। ये सब प्रश्न एक जैसे हैं। फरिश्ता लाइफ क्या है? क्या है फरिश्ता लाइफ? फरिश्ता क्या है वो नहीं, लाइफ। फरिश्ता लाइफ सब कुछ करते हल्के लेना और प्यारी है और मन बुद्धि से हल्के सर्वे रिश्तों से परे, ये सब थियरी है। फरिश्ता लाइफ पर्सनैलिटी ऑफ एन एंजल। एंजल की पर्सनैलिटी कैसी होती है, एंजल का व्यक्तित्व कैसे होता है, फरिश्ता क्या है, फरिश्ता रूप क्या है, क्या ऐसी कोई आकृति और प्रतिकृति है लाइट की बनी हुई जिसमें पंख है, प्रकाश है, ग्लो है, हेलो है, आभा मंडल है, क्या वो फरिश्ता है? फिर फरिश्ता क्या है? फरिश्ता ऐसे नजर, शुभ भावना, शुभ कामना। चलो फरिश्ते की तो हजारों परिभाषा है, किताब भी है ना, फरिश्ता अर्थात ये, फरिश्ता अर्थात वो, फरिश्ता अर्थात सभी जानते हैं वो। फरिश्ता ऐसे नजर आ रहा है जैसे बाबा देख रहे, बाबा कैसे देख रहे, हमें एक दो को कैसे देखना है। दो प्रश्न है, फरिश्ता जीवन क्या है, फरिश्ता लाइफ क्या है, और एक दो को कैसे देखना है, उसका भी उत्तर एक ही है, कैसे देखना है, फरिश्ता देखना है। पर फरिश्ता मन की वह स्थिति है जो कि इस संसार से परे है, इंटरफियर नहीं कर रही है कहीं पर भी इस संसार में। एक रूस पाश्चात्य जगत में, रूस में लियो टॉलस्टॉय करके एक बहुत महान ऑथर लेखक हुआ, उसने एक बहुत ही सुंदर एक अपनी किताब लिखी है, कहानी लिखी है, जिसमें उसने लिखा कि एक बार डेथ ऑफ गॉड ऑफ डेथ, जो मौत का देवता है, उसने एक फरिश्ते को धरती पर एक स्त्री के की आत्मा को वापस लेके जाने के लिए कहा। फरिश्ते को भेजा जाता है रूस में, तो फरिश्ता नीचे उतरता है एक स्त्री की आत्मा को लेके जाने के लिए, तो देखता है कि स्त्री तो मर चुकी है परंतु एक तीन उसके छोटे छोटे बच्चे बच्चिया, एक बच्ची दूध पी रही है, एक बच्ची चिल्ला रही है, एक बच्ची सोई हुई है, अभी अभी जन्म दिया है, जन्म दिया और मर गई माँ, और उसको भेजा गया है उस माँ की आत्मा को लेके जाने के लिए। तो वो देखकर, दृश्य देखकर वो पूरा पिघल जाता है, वो कहता है मैं नहीं लेके जाने वाला, ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या होगा इनका। तो वो वापस जाता है और कहता है अपने बॉस को ये मेरा किसी और को भेजो। वो कहता है कि तुम इतने होशियार हो गए कि इसमें इंटरफियर करने लगे डेथ और लाइफ में, इसके लिए ये जो तुमने अपराध किया जघन्य अपराध है, इसके लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें इस धरती पर उतरना होगा, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, और जब तुम तीन बार हंसोगे तब तुम वापस आओगे। हंसना दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, अपनी गलती के ऊपर, जब तुम हंसोगे तीन बार तब तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तब तुम वापस आ सकते हो। तो वो धरती पर उतरता है, एकदम सामान्य सा व्यक्ति, ठंड है रूस में, ठंड बहुत है, तो वहां पर एकदम कड़कड़ाती वो ठंड, उसके पास कपड़े नहीं है, पतला सा दुबला सा वो खड़ा है, और वहां से एक जूते बनाने वाला चमार वो वहां से जाते रहता है, तो देखता है बेचारे पर, ये उसको तो पता नहीं होता ये फरिश्ता है करके, तो उसे देखकर उसे बहुत दया आ जाती है, और वो उसको जो खिलौने कहो या अपने बीवी, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो सामान लेने जाने जाते रहता है, तो वो उसके लिए ले लेता है, उसके लिए कपड़े वगैरह वगैरह, और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ घर चलो। तो वो उसको अपने घर लेके जाता है, और जैसे घर जाता है उसकी पत्नी जब देखती है ये क्या कर रहा है, ये सामान बच्चों के खिलौने के लिए दिए थे पैसे, और ये उस व्यक्ति को एक भिखारी को उठा कर लेके आया है और उसके लिए सारा खर्च कर दिया इसने, तो ये जब बहुत चिल्लाती है तब वो फरिश्ता हंसता है, सोचता है कि ये कैसी स्त्री है, इसे ये भी नहीं पता उसके घर में कौन आया है, मैं फरिश्ता हूं जो चाहे वो दे सकता हूं, उसे ये पता ही नहीं मनुष्य अपनी जीवन में केवल जो छोटी छोटी हद की चीजें है बस उन्हीं को देखते रहता है, उसी में जीता है, और इधर फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलने वाला है वो उसका उसका कुछ खबर ही नहीं उसे, उस स्त्री को। तो वो पूछता है तुम क्यों हंसे, वो कॉबलर पूछता है तुम, वो कहते हैं बाद में बताऊंगा, अपनी गलती पर हंसा हूं ये देखकर कि मैं क्या सोचता था और मनुष्य क्या है। फिर धीरे धीरे वो जो चमार है, क्योंकि ये उसके अंदर अंडर काम करता है फरिश्ता, ऐसे ऐसे जूते बनाता है कि वो चमार बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर उसके जूते बनते हैं, तो राजा तक ख्याति जाती है। तो राजा आता है, राजा के सिपाही कहते हैं कि राजा के लिए जूते बनाने हैं, पर ध्यान रखना चप्पल मत बना देना, क्योंकि रूस में ऐसी मान्यता है कि चप्पल जो मर जाता है व्यक्ति तब चप्पल पहनाया जाता है, वैसे जूते। तो वो अपने फरिश्ते दोस्त कहो या नौकर कहो, उसको वो कहता है कि ठीक से बनाना राजा के लिए, अगर थोड़ी भी गलती की ना तो बस देख लेना। तो वो बनाता है और जब टाइम आता है सिपाही आते तो देखता है इसने तो चप्पल ही बना दी, जूते तो बनाए नहीं। तो वो कहता है कि जो राजा मरने वाला है उसके लिए मैं जूते क्यों बनाऊं, और वैसा ही होता है, वो राजा उसी दिन मर जाता है। फिर से वो फरिश्ता हंसता है, कहता है कि मनुष्य देखो कैसा है, उसे पता नहीं वो क्या होने वाला है फिर भी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते रहता है अपने लिए। वो ये देखकर उसे हंसी आती है मनुष्य के स्वभाव को। कुछ समय के बाद एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ उसी दुकान पर आती है, तो वो पहचान लेता ये तो वही है, ये 3 लड़कियां शायद ये महिला भी वही है। तो वो महिला कहती है कि मेरी 3 बेटियों के लिए जूते अच्छे वाले बना के दो, ये तो अच्छा हुआ कि इनकी माँ मर गई तो मेरे पास बेटी नहीं थी, इसके लिए मैंने इन 3 को अडॉप्ट कर लिया। अगर ये देखो आज कितनी ऐश आराम में रह रही है, अगर वो माँ जिंदा होती तो कहाँ होती ये लड़कियां पता नहीं, नर्क में। वो तो कितनी गरीब महिला थी। वो फरिश्ता फिर अपनी गलती पर हंसता है, वो कहता है कि मैं क्या सोच रहा था, अगर इस वृत्तांत को देखा जाए पहले से लेकर अंत तक तो फरिश्ता क्या है, फरिश्ता लाइफ क्या है उसकी थोड़ी गहराई पता चलेगी। एक तो फरिश्ता साक्षी है, वो इंटरफियर नहीं करता है उसके नियमों में। जब हम इंटरफियर करना चालू करते हैं माइंडिंग वन्स ओन बिजनेस MOB, तो जब फरिश्ता कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता है, वो हल्का रहता है, वो आज्ञाकारी है, जो उसे कहा गया वो करेगा, ये फरिश्ता जीवन है। रहमदिल है, ऐसा नहीं कि रहमदिल नहीं है, परंतु त्रिकालदर्शी भी है, सारी चीजों को देख लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की जहां अंडरस्टैंडिंग है, कैसे व्यक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ही गलतियों पर बार बार हंसता है, एक है दूसरे की गलतियों पर हंसना, एक है अपनी गलती पर हंसना। अपनी गलती पर हंसना ये ऊंची अवस्था है, उसमें अपने अहंकार को अपने ईगो को नीचे करना होता है। अपने पर हंसने वाला कि मैं भी कैसा मूर्ख था, मैं भी कैसा था। तो फरिश्ते की तो बहुत सारी परिभाषा है, परंतु एक जो परिभाषा वो है साक्षी भाव, त्रिकालदर्शी की अवस्था, दुरांदेशी, आज्ञाकारी, हल्कापन, इंटरफियर नहीं करना किसी के भी लाइफ में। बीच में हमने एक टॉपिक भी लिया था ना, माइंडिंग योर ओन बिजनेस, MYOB भी कहते हैं या MOB, इंटरफियर नहीं करना किसी में, दूसरों की प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी के बारे में फैलाना कोई बात, रूमर्स, गॉसिप, गॉसिप मॉन्गर्स, गॉसिप ग्रुप ज्वाइन करना, बैठ के कौन क्या कर रहा है इसकी चर्चा करना, ये बहुत बहुत घातक है आत्मा के लिए। परदर्शन से तीव्र गति से पतन होता है आत्मा का, एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ परदर्शन। परदर्शन है धूल और परचिंतन है मिट्टी, कभी स्लोगन था, वेदागर था, दोनों से परे। तो फरिश्ता लाइफ एक ऐसी लाइफ है, इसकी अपनी ही कल्पना बनानी है, एक विजुअलाइजेशन करना है। हम वो पत्थर है ना, तो मूर्ति में अपने ही इस मूर्ति में उस फरिश्ते को देखना कि ऐसा हो। अभी ये कर रहे हैं, ये न करना फरिश्ता है, क्योंकि ये सब करना फरिश्ता बनने में व्यवधान है। परचिंतन, परदर्शन, ब्लेम गेम, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से वैसा हुआ, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, नेगेटिव, इन्फियोरिटी, जेलसी, ये सब फरिश्ते के गुण नहीं है। फरिश्ते ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बाबा देख रहे, बाबा कैसे देख रहे, हमें एक दो को कैसे देखना है, तो एक दो को कैसे देखना है, जो रूप में हम स्वयं, जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें देखे, हम भी उन्हें वैसे ही देखे। हम चाहते हैं कि हमारी गलती किसी को पता ना चले, परंतु हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि दूसरे की गलती को सब जगह बताए, प्रसिद्ध करे, हमारी गलती को हम नहीं दूसरों को बताना चाहते। तो दूसरों को कैसे देखना है, उसी रूप से, उसी महानता से। अवस्था चाहे कैसी भी हो आशीष भाई, परंतु अभी सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? इसी से रिलेटेड एक दूसरा भी प्रश्न है, किसका कोई टेढ़ा है, कोई बाका है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अवस्था सबकी अंदर से कुछ भी है, ये बात है। अभी डायमंड हॉल, सबकी अवस्थाएं अलग अलग है, वहां पर किसने बहुत बड़ी गलती करके वहां बैठा है, कोई पश्चाताप करके बैठा है, कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बैठा है, कोई बहुत योग युक्त स्थिति में, कोई वहां बैठा है पर सोच कुछ और रहा है। अलग 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 कुछ कुछ कर रहे हैं सब लोग, परंतु फिर भी रिगार्डलेस ऑफ दैट, अवस्था कैसी भी हो, परंतु सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है, क्यों? क्यों मुस्कुरा रहे कमलेश? वो मुस्कुराता हुआ देख रहा है करके ये भी मुस्कुरा रहे हैं, और सबका फोकस एक ही है, और खुशी हो रही है, भाग्य को देखकर भी हंसी आ रही है, उस सभा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, स्वयं के भाग्य को, दूसरों को देखकर, भगवान को देखकर, वो पावर भी है उस समय, वो जो टाइम है उस समय, थोड़े समय के लिए वो पुराने संस्कार सब दब जाते हैं, कुछ समय क्यों ना हो, परंतु तब तो जाते हैं। इसके लिए सभी खुश हैं, चाहे अवस्था अंदर से कैसी भी हो। पता है सबको क्या बोलने वाले हैं बाबा, फिर भी बहुत खुश है, सब सुनना ही चाहते हैं। तो अंदर भल कोई कितना, ये अवस्था कैसी भी है, परंतु चेहरा मुस्कुरा रहे, इसका एक दूसरा अर्थ भी है। अवस्था कैसी भी हो, परंतु वो चेहरे पर नहीं आए। दादी जानकी ने किसी को कहा था ना, किसी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो ऐसे ऐसे मुंह बना रही थी कुछ। बोले तुम्हारे पेट में दर्द है ना, तो ये चेहरे को क्या हुआ? चाहे कुछ भी होते रहे, इधर नहीं आना चाहिए वो पावर। हमने इतनी सारी दादियों को देखा है कि जिनको बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, इधर लाइन, उधर लाइन, इधर लाइन, इधर लाइन, ट्यूब, ड्रेन, कुछ 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 कुछ, पर कैसी उपराम अवस्था, कोई जैसे उसका असर ही नहीं वो सब चीजों का। नहीं तो एक प्रिक करो यहाँ पर, कैसे दर्द होते हैं? कुछ नहीं, इधर में क्योंकि एज की वजह से लाइंस मिलती नहीं है, पेरी लाइन जो होती है ना बिल्कुल नहीं मिलती, और मिली भी तो आउट हो जाती है थोड़ी देर में, कुछ घंटों में कुछ भी देने तो चाहो सूजन आ जाती है, कुछ होता है कुछ होता है कुछ होता है। तो देह से कितना डिटैच है यही पुरुषार्थ है, और वो सबसे ज्यादा पता चलता है बीमारी के समय। हमारे पास एक पेशेंट आया था, एकदम वो नेशनल लेवल पर उसने वो कुश्ती में भाग लेने वाला था, वो इससे पूरा एकदम क्या कहते हैं उसे 5-pack 6-pack बॉडी बिल्डर से भी बहुत ही तक, बहुत ही पावरफुल था वो। तो उसको आईसीयू में एडमिट किया था, तो एकदम ऐसा था वो और बैठा मतलब था, तो उसको लाइन लेने के तो रोना चालू कर दिया उसने मुझे डर लगता है इससे इतना रो रहा है मतलब पूरा आंसू वगैरह आ रहे हैं उसको महाभारत में 3 प्रकार के बल की चर्चा है, बाहुबलम, बुद्धिबलम, आत्मबलम। एक है शारीरिक बल, उससे बड़ा है बुद्धिबल। बुद्धि का बल अर्थात विज्ञान, वैज्ञानिक होते हैं ना, बुद्धि होती है उनके पास, पतले दुबले होते हैं परंतु बुद्धि बहुत होती है। तीसरा है आत्मबल, बुद्धि कितनी भी हो परंतु वो मॉरल पावर नहीं रहती है वहां पर। बुद्धि बहुत है परंतु विकारों में या फिर अवैध कर्म में व्यक्ति चला जाता है। बुद्धिमान बहुत होते हैं परंतु दिशा भटक जाती है, इसके लिए बुद्धि बल भी श्रेष्ठ बल नहीं है। सबसे श्रेष्ठ बल है आत्मबलम, योग बलम, वो कितना कमाया है। एस्कोबार पावलो, ये नाम सुना है? एस्कोबार पावलो, ये एक व्यक्ति था, पैब्लो, ड्रग, इतना उसने बिजनेस किया, इतना भी तो उसको तो पुलिस ने मार दिया था गोली से। इज नोन एज ड्रग लॉर्ड, कोकेन सबसे ज्यादा स्मगलिंग जिसने किया था विदेश में, 1983 में उसे मार दिया था। इतना उसका विस्तार था, इतना बुद्धिमान वो व्यक्ति था, परंतु उसने सारी अपनी एनर्जी वो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, वो सब स्मगलिंग और उसमें सब लगा दिया। उसके बेटे ने अपने पिताजी पर एक किताब और डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द सिंस ऑफ माई फादर, मेरे पिता के पाप। तो इतना बुद्धिमान वो व्यक्ति था परंतु सारी चैनलाइज नहीं कर पाया। लास्ट में 1993 में उसको गोलियों से मार दिया गया, क्योंकि कितना बड़ा इनाम रखा था उसके प्रति कोलंबिया में, द गॉड ऑफ कोलंबिया, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे व्यक्तित्व में उसके ये है, परंतु बुद्धि बल था कलर, आत्मबल नहीं था। इसके लिए आत्मबल, तो क्या करना है कहते हम, अवस्था अंदर से कैसी भी हो ऊपर नहीं आना चाहिए, ये अभ्यास। शारीरिक वेदना, दर्द, अंदर भले किसका कितना भी फर्क है वह तो खुद जाने, इसमें हम क्या जाने, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, आया ना उर्ली में, वो खुद जाने हम क्या जाने। यहाँ एक बात है कि ये परदर्शन के बारे में भी कह रहे हैं, अगर इसमें होमवर्क उठाना है तो जैसे कहा माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना है, दूसरों की पर्सनल लाइफ, दूसरों की स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरों की प्राइवेट लाइफ, दूसरों के संबंध, उस सब में नहीं जाना है। इंटरनली बातें, ये यहाँ क्यों है वो वहां क्यों है, ये इधर से चेंज क्यों हुआ वो वहां से चेंज क्यों हुआ, तुम्हें क्या करना है। बाइबल में दिखाते हैं ना, जीसस क्राइस्ट वापस आता है 3 दिन के बाद रेजरेक्शन, और अपने शिष्यों से फिर मिलता है, तो एक शिष्य उसे बार बार पूछता है पीटर कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जीसस कहता है यस, फिर से पूछता है क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है, यस, फिर से पूछता है क्या है, यस। ये वही पीटर है जो उसको डिनाई करता है एक बार, और कहता है जब जीसस को पकड़ लेते हैं कि मैं उसका शिष्य नहीं हूं, मैं उसे जानता भी नहीं, तब उसको पीटर को छोड़ देने, तो उसको भी पकड़ के लेके जाते रहते, वो उसको 3 बार नकारता है मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वो सैनिक कहते तुम भी कभी कभी दिखे थे उसके साथ, वो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं था। वही पीटर अभी पूछता है कि क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है, यस यस यस। और तीसरी बार जब यस कहते तो उसे एकदम से रियलाइज होता है और याद आता है कि मैंने ही तो नकारा था। वहां वो एक प्रश्न पूछता है, ये जो पीछे है जॉन, क्या तुम उससे भी प्यार करते हो? जीसस क्राइस्ट से पूछता है, वो कहता है व्हाट इज दैट टू यू, वो मेरा और उसका है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। तो ये जो वाक्य है ना, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो, दूसरे के जीवन में दूसरे के इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना देना। यहां पर भी बाबा देखो साक्षी है। कल कहा था ना बाबा को कौन सी फीलिंग आती है, पांच फीलिंग्स बताई थी। सबसे पहला हर्ष होता है सब बच्चों को देखकर, दूसरा उसको तरस, तीसरा दूसरा उसको गर्व महसूस होता है, मेरे इतने सारे बच्चे, बाप को नाज है। पहला तो बहुत खुशी होती है, दूसरा हर्ष होता है, तीसरा रहम आश्चर्य, क्या आश्चर्य, क्या बना दिया और क्या कर रहे हैं, मैंने क्या दिया है और क्या कर रहे हैं, सब दे दिया है मांग क्या रहे, हीरे देने आया हूं कागज मांग रहे। और पांचवा चौथा रहम, रहम रहम, और लास्ट नो फीलिंग्स, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल वाली बात है, वो खुद जाने इसमें हम क्या जाने, हमें क्या। वो एक है सप्रेशन, रिप्रेशन करना, हमने रिप्रेशन नहीं किया है, सप्रेस नहीं किया है, उसको उदत्तीकरण, दिव्यकरण, डिवाइनाइजेशन, सब्लिमेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन किया है। एक है दबा देना, जैसे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, उसको दबा दबा के मर मर के जी रहे, वो नहीं, हाँ गोली ले लेके, वो है सप्रेशन का मार्ग, वो नहीं। दो मार्ग है, एक तो भोग का, एक सप्रेशन का। एक तो भोग में डूब जाओ, एक तो सप्रेस कर दो, वो दोनों भी नहीं करने, उसको समझना है क्या है। और बीच का मार्ग, बीच का बाबा ने जो मार्ग बताया है वो ज्ञानमय प्रेममय समझ। समझ जब आ जाए, जैसे क्रोध, अब क्रोध क्या है, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। यदि क्रोध की सीढ़ी निकाली जाए, वीडियो निकाला जाए, क्लिप अपना ही किया हुआ और हमको दिखाया जाए, तो हमको लगेगा ये मैं था, ये मैं और ऐसा, फिर हमको पता चला नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो दबाया 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 नहीं। यह जानना, उसकी व्यर्थता को जान लेना या उसके डेंजर को जान लेना, इसमें जहर है ये कैसे खाऊं, वो किस डिग्री से जाना है, तो वो छूट जाएगा। फिर उसको छोड़ा नहीं, वो क्रोध ऐसे छूट गया जब उसका अस्तित्व नहीं है, इनोसेंट। एक है इग्नोरेंस, एक है इनोसेंस। इग्नोरेंस प्री नॉलेज है, इनोसेंस पोस्ट नॉलेज है। इग्नोरेंस नहीं, अज्ञानता नहीं, इनोसेंस। इनोसेंस हायर स्टेज है स्पिरिचुअलिटी की। तो सप्रेस नहीं करना है, दमन नहीं करना है, वो नेचुरल हो रहा है। जैसे हमने उदाहरण दिया दादियों का, दादियां जबरदस्ती कर रही है कि दर्द तो बहुत है पर मुझे दिखाना नहीं है क्योंकि मैं योगी हूं। ऐसा नहीं है, वो सहज है, अभ्यास लंबे समय तक, ताकि वो दर्द महसूस नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण अशरीरी की पंच अभ्यास प्रैक्टिस। तो इसमें हम क्या जाने, ये कितना साक्षी भाव है उसका, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, अपने आप ड्रामा चल रहा है, वो कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता है बाबा, अगर देखा जाए तो। आजकल बाबा को कितने प्रश्न पूछे जाते, क्या उत्तर देते ये मीटिंग है, ये प्लानिंग है, क्या कहते हो, अच्छा है, कोई कहते है नहीं 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 ये नहीं वो, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। उसका साक्षी भाव अगर देखा जाए तो 10 सालों में और भी बढ़ गया है। अच्छा पुरुषार्थ है। कर्म फिलोसॉफी में इंटरफियर नहीं करता है वो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। कर्म प्रधान संसार को करके रख दिया है। राम जो है वो इस संसार में कहीं इंटरफियर नहीं करता है। तुलसीदास लिखता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व को कर्म प्रधान कर दिया, अपने आप साइकिल, ऑटोमेटिक मशीनरी है, एक अव्यक्त वाणी है, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, एक का 100 गुना पुण्य और पाप दोनों। तो लास्ट प्रश्न कर लेते फिर पूरा करते हैं। अपनी ही अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। कौन सा रूप अच्छी, क्या कैसे देख लो, ये कहने के उस दिन भी कहा था ना, भाव अलग अलग है। अपना ही चमकीला रूप अर्थात फरिश्ता रूप विजुअलाइज कर लो कि ये मैं हूँ, और इसको बार बार याद करना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मतलब अगर गलती हो भी गई कहीं तो तुरंत याद करना कि फरिश्ता जो होता है वो कभी भी कहीं पर भी फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं किसी भी देहधारी में। कितनी बार ये पॉइंट आई है मुरली में, कितनी बार, हजारों बार, अनगिनत बार, कि तुम्हें किसी भी देहधारी में फंसना नहीं है। परंतु फंसते हैं बहुत ही रॉयल रूप से, सेवा का संबंध ऊपर से है, ऊपर से सब सेवा 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 सेवा, स्टैंप लगा दो कि सुरक्षित। किसी भी संबंध में सेवा लगा दो, है वो कुछ भी हो सकता है, परंतु हम छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। स्वयं स्वयं को ही धोखा देना, आत्म वंचना, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। तो अच्छी तरह से देख लो अपना रूप, ठीक है, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। ऐसा बोला नहीं है। लास्ट प्रश्न, कौन से मीठे स्वरूप, नागेश भाई, मीठे स्वरूप का अनुभव करना है, मीठा कैसे बनना है? फरिश्ता स्वरूप जो है, फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता पर्सनैलिटी, फरिश्ता व्यक्तित्व, फरिश्ता लाइफ, ये मीठा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरफियर नहीं करता है कहीं पर भी। ये जो सृष्टि का नियम है उसमें कहीं इंटरफियर नहीं करता, हार्मनी है एक। वो जो उस दिन चक्रों की बात कर रहे थे ना, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार से चेतना ऊपर उठने लगी, मूलाधार से ऊपर ऊपर, नीचे के तीन चक्रों से तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को तो छोड़ दिया, अब लॉ ऑफ ग्रेस में आ गई है। पहले तीन चक्र लॉ ऑफ ग्रेविटी पर ऑपरेट करते, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, वो नीचे नीचे चक्र है ये तीनों नाभि तक। परंतु यहाँ हार्ट में आ गया एक बार अनहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा और सहस्त्रार, ये जो चार चक्र है ऊपर की, यहाँ तक आ गया हार्ट, अर्थात कहा था प्रेम, ये सब तो फिर एनर्जी ऊपर ऊपर फ्लो होती है। तो फरिश्ता कहो वो उस सहस्त्रार चक्र ऊपर रहे इस सब से, नीचे की ओर नहीं, देह भान में नहीं, काम में नहीं, वो क्रोध में नहीं, एनर्जी ऊपर उठी है। तो वो जो अवस्था है फरिश्ते की अवस्था है, वो मीठी अवस्था है। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं, कहीं पर विरोध नहीं, ऐसा की हुई वैसा की हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब नहीं है, मीठी अवस्था। हाँ वही ना, ये नीचे, परंतु हाँ जब भी नीचे आओ ये रियलाइजेशन कि मुझे अपना लक्ष्य क्या है। मूर्ति को बार बार बाबा ने अलग अलग शब्द जो यहाँ कहे, चाहे संपूर्ण मूर्ति कहो, फरिश्ता कहो, बेफिक्र बादशाह कहो, योगयुक्त कहो, योगयुक्त हो, योगयुक्त रहकर दूसरों को योगयुक्त बनाना, केवल शब्दों का खेल है, स्थिति एक ही है। तो यही पूरे करने थे आज, हो गए। कौन से स्वरूप, मीठे स्वरूप का अनुभव करना है, मीठी, ये तो केवल हम ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहे हैं, और इसके अच्छे से चर्चा की जा सकती है। एक एक प्रश्न में, एक एक बड़ी बड़ी क्लास, या एक एक महीना में चल सकता है एक प्रश्न ही। हाँ, तो अभी और 23 तक हो गया, 30 तक है, और 7 प्रश्न कर लेंगे और इसको पूरा करेंगे। तो फिर से मुरली को अच्छे से पढ़ना, और उसमें से ये तो कुछ प्रश्न है, और प्रश्न निकालना, मेरे लिए क्या प्रश्न है, ठीक है।